आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों के मजदूरों पर हमले हुए। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। बच्ची से की जाने वाली दरिंदगी की घटना के बाद ये हमले शुरू हुए, जिसमें कई आयाम और भी बाद में जुड़ गए। 28 सितंबर 2018 को पुलिस ने बिहार से आए एक मजदूर को छोटी बच्ची के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने राज्य के कई हिस्सों में प्रवासी मजदूरों पर हमले शुरू कर दिए। जिन लोगों पर हमले हुए वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के थे। अभियुक्त व्यक्ति साबरकांठा के हिम्मतनगर टाउन जिले की एक सिरेमिक इकाई में काम करता था। पुलिस ने अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि कोई आपराधिक घटना होने पर पूरे समुदाय और पूरे समूह को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और ये भी दुखद पहलू है कि इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया का भी गलत तरीके से उपयोग किया गया।
ट्रेन में तो नहीं हुआ, बाकी ट्रेन में भी धमकी दे रहा था। बिहारी लोग को, हिंदी वाले लोग को अति करेंगे, और जो गुजराती जानता था ना, उसका गेट पर अति देखता था, आधार कार्ड देखता था, और हिंदी के था तो उसको भी मारता था।
वो लोग है ना सर, वहाँ पे मजदूर आदमी को कमाने के लिए न मजबूर करते हैं, मारते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए मना करते। तुम लोग पूरा यूपी बिहार के लोग, तुम लोग खाली करो यहाँ से, हिंदी भाषा कोई नहीं चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं ना, जो पटेल और ठाकुर है, दो लोग वहाँ के हैं ना, ऐसे करते ज़्यादा करके। अभी पूरे वहाँ के गुजरात के लोग उसमें भी शामिल नहीं है सर। हम लोग तो डर के मारे सर भागे हैं वहाँ से, डर से भागे हैं। क्या मालूम अगर मिले काट दे तो क्या करेंगे हम तो मजदूर आदि मर जाएंगे सर।
बिहारी के देख नहीं चाहता, मुड़ी उतार देता है, रूम में धर लेता है, रूम में जान मार देता है। अभी दंगा फसाद कर रहे वहाँ पर।
फैक्ट्री में काम किया था, वो लोग गया था कि जल्दी भागो, बंगाली का और बिहार का आदमी भागो, न तो 10 तरीके धुलाई पड़ेगा, पीटेगा तो भाग दिशा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग गाँव आते हैं, हम लोग को पकड़ लिया है 10 आदमी में, ऑटो टेम्पो पकड़ लिया है, रुपया दो और भागो
भाग जाओ। सब बिहारी मत रहो, गुजराती मार कर बिक जाएगा।
अभी उधर बहुत झंझट धमली चल रही है ना, इसलिए आ गए हम लोग। सब सर लोग बोल रहे भाग जाओ इधर, नहीं तो मार डालेंगे सब। डर है ना, रात रात को उधर घूमने के लिए आते थे सब लोग के रूम पे, दरवाजे पीटते थे।
एक व्यक्ति के आरोप को पूरे समुदाय और पूरे एक इलाके से जोड़कर देखना और फिर इसी के आधार पर भीड़ का लोगों को सजा देने के लिए निकल पड़ना खतरनाक रुझान साबित हुआ। राजनेताओं ने भी गदले पानी में मछली शिकार करने की कोशिश की, और ये भूल गए कि इन कोशिशों के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हो सकता है। सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी, खासकर अल्पेश ठाकुर पर हिंसा और नफरत भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस और ठाकुर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और बीजेपी सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। हिंसा भड़कने के बाद ठाकुर ने कई फेसबुक लाइव कर अपने समर्थकों से शांत रहने और हमले न करने की अपील की थी। पूरे प्रकरण में पुलिस विभाग के प्रयासों की तारीफ की गई। घटनाओं के बाद डीजीपी शिवानंद झा ने पत्रकारों से कहा कि ऐसे अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वहीं गुजरात के गृह मंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में 57 शिकायतें दर्ज हुई हैं और करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने बयानों से लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। डीजीपी शिवानंद झा ने बताया कि पुलिस ने क्या कार्यवाही की।
28/9 को जो गंभोई में दर्दनाक नन्ही बालकी के ऊपर रेप का हादसा बना, उसके रिएक्शंस में कुछ लोग जो बाहर से आए गुजरात में नौकरी करने, इन लोगों के खिलाफ कुछ बनाव हमला के बने हैं। ये किसी भी संजोग में हम चलाएंगे नहीं। जहां जहां पे ये बनाव बने हैं वहां हमने भारी से भारे सेक्शंस लगा के एक्शन लेना शुरू किया है।
मगर इस बीच बड़ी संख्या में लोग गुजरात से जा चुके थे। गुजरात में प्रवासियों के लिए काम करने वाली संस्था उत्तर भारतीय विकास संगठन का कहना है कि 80,000 से अधिक प्रवासी गुजरात छोड़कर जा चुके हैं। संस्था के अध्यक्ष श्याम ठाकुर कहते हैं कि साबरकांठा में हिंसा की पहली घटना के बाद से ही पलायन शुरू हो गया था। लोग ट्रेनों और बसों में भर भर कर अपने घरों की ओर जा रहे थे। ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने 56 यात्रियों की क्षमता वाली बस में 150 लोगों को सवार होते देखा। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय नेताओं, पुलिस और सरकार की मदद से बहुत से लोगों को विश्वास में लिया गया। अब ये लोग गुजरात छोड़कर नहीं जा रहे। उन्होंने बताया कि मजदूरों के पलायन से उत्तरी इलाकों के उद्योगों पर असर पड़ा है, हालांकि अब तक कोई भी इकाई बंद करने की नौबत तो नहीं आई है। मध्य प्रदेश की इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्यूनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनंत सुगंधे ने गुजरात के प्रवासियों पर एक अध्ययन किया है। उन्होंने बीबीसी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान बताया था कि मुंबई में जब प्रवासी मजदूरों पर हमले शुरू हो गए थे तो ये मजदूर महाराष्ट्र से गुजरात पहुंच गए। 2008 के बाद गुजरात में इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी। सुगंधे ने एक अध्ययन में पाया कि प्रवासियों की कम से कम 38.93% आबादी अकेले सूरत में रहती है। इसके बाद 18.29% आबादी अहमदाबाद में बसती है। वो कहते हैं लोग गुजरात को महाराष्ट्र से ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, इसलिए वे वहां चले गए। क्या ये हमले राजनीतिक फायदे के लिए कराए जा रहे हैं? कुछ टीकाकारों का मानना है कि बीजेपी ने तत्काल कहा कि इसमें अल्पेश ठाकुर की भूमिका है। अल्पेश ठाकुर पर ऐसे आरोपों से लोगों के बीच शक इसलिए बढ़ा क्योंकि रेप पीड़िता ठाकुर जाति से है। अल्पेश ठाकुर को कांग्रेस ने बिहार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाकर भेजा है। बीजेपी का अल्पेश ठाकुर पर हमला पूरी तरह से राजनीतिक है। टीकाकारों का कहना है कि पूरे गुजरात में बिहार के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सबसे ज़्यादा मजदूर हैं। दोनों राज्यों में चुनाव हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस ने हिंदी भाषियों पर हमले करवाए और गुजरात सरकार ने, जो कि भाजपा की सरकार है, सुरक्षा देने का काम किया। मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब तक हिंदी भाषियों पर इस तरह के हमले नहीं हुए, लेकिन राजनीति में वक्त के हिसाब से ध्रुवीकरण के तरीके बदलते हैं और आजमाए तरीके अप्रासंगिक होते हैं। ये टीकाकारों का कहना है। मोदी के दौर में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण था, अब ये तरीके पुराने पड़ गए हैं, इसलिए क्षेत्रवाद या नया मुद्दा प्रयोग के तौर पर हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था उसके हाथ में है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि जो भी इसमें गुनहगार है सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, बयानबाजी ना करे। उद्योग जगत से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दहशत के माहौल की वजह से मजदूर भाग रहे हैं। इससे उद्योगों और कारखानों के मालिकों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि मजदूर चले गए तो वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे। GCCI के सचिव शैलेश कहते हैं कि प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अच्छा कदम उठाया।
शुरुआत में जो मारपीट हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरह से अभी वर्कर्स का मीटिंग करते हैं, उनको भी आश्वासन देती है कि आप मत घबराओ, हम आपके साथ हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जो चले गए उसको वापस लाने में कभी शायद एक महीना लग जाएगा, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि जो तरह से अभी शांति लग रही है तो शायद नए वर्कर्स जाएंगे नहीं। हमने भी नरोड़ा में ऐसा किया है कि वर्कर्स जो बाहर गाँव के बाहर से आते हैं हमारे वहाँ, तो उनको हम फैक्ट्री के और एस्टेट के अंदर ही रहने का इंतजाम कर देंगे, जिस वजह से उनको परेशानी कम हो। हमने GCCI को भी कागज़ लिखा, GCCI ने भी कागज़ लिखा है। उसमें यही किया है कि जिस तरह से ये लेबर चले जाएंगे तो गुजरात की इंडस्ट्री में 70-80% वर्कर्स नॉन गुजराती है, और वो लोग को जो काम दे रहे हैं वो वर्कर्स में इतनी स्ट्रेंथ है जो हमारे कारीगर लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो हमको ये कारीगर एक बेसिक रॉ मटेरियल है। हमारे पास कच्चा माल कुछ कितना भी होगा लेकिन कारीगर नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं चलने वाली है। इसलिए कारीगर को ऐसा निकालना गुजरात की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत खराब। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन जो कोई भी कर रहा है वो देश का हित कर रहा है, गुजरात का हित कर रहा है, और इनको कोई माफ़ नहीं करने वाला है। गुजराती को ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गुजराती के लोग ऐसे लेबर कर ही नहीं सकते। उनके ब्लड में लेबर करने की आदत कम है। वो धंधा करेगा, छोटी दुकान कर लेगा, लेकिन बैग कंधे पे उठाने की उनकी ताकत नहीं है। वो हमको समझना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा।
राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुरू से ही बयान दिया कि स्थिति को काबू में किया जा रहा है और उन्होंने मजदूरों को भी आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की जाएगी।
गुजरात में परिस्थिति काबू में है, सभी को सुरक्षा अच्छी तरह से दी जा गई है, पुलिस को स्टैंड टू बनाए रखा है। गुजरात के लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि शांति और सद्भावना रखें। जिस बच्ची पर बलात्कार हुआ उसको 24 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट को भी लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना चाहती है, जल्दी से जल्दी उनको दंड मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। गुजरात में भाईचारा, शांति, सद्भावना बनाए रखने के लिए मैं अपील भी करता हूं। बिन गुजरातियों को पूरा प्रोटेक्शन सरकार दे रही है, किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं है और ऐसे कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
सारनाथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत शाह का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उससे मजदूरों और उद्योगों दोनों को नुकसान पहुंच सकता है और इस स्थिति पर नियंत्रण पाना जरूरी है।
गुजरात में आज सबसे बड़ा गुजरात शांतिप्रिय प्रदेश है, आज तक गुजरात के अंदर ऐसी कोई घटना बनी नहीं है, मगर ये जो पिछले 4-5 दिन से जो घटना घट रही है उसके कारण इंडस्ट्रीज और बाहर वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। ये अगर रोका नहीं गया तो गुजरात को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है इंडस्ट्रीज़ को। हमारे सारनाथ में 4000 उद्योगकार ये जो मजदूर है वो पलायन कर चुके हैं। सारनाथ में आज भी 10,000 वर्कर और भी बाहर के ठहरे हुए हैं, उनको हमने पूरी आश्वस्ता दी है कि भाई सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी अब लग गई है। हमारी गवर्नमेंट से भी अपील हो गई है और गवर्नमेंट ने SRP वगैरह लगा दी है, उसके कारण आज सारनाथ में हो सकता है कि आगे कुछ तकलीफ नहीं बढ़ रही है। मगर नॉर्थ गुजरात की जो बात करें, ये जो इंसिडेंस है वो नॉर्थ गुजरात में घटा था, वो नॉर्थ गुजरात की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको बड़ी तकलीफ हो रही है।
इस मामले में एक व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर बाद में आई, हालांकि कुछ अधिकारियों ने कहा कि मौत दुर्घटनावश हुई। सस्ते मजदूरों को बोझ के रूप में देखना और किसी भी अवसर पर उन्हें सजा देने के लिए निकल पड़ना खतरनाक रुझान है।